आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है।
स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 5 को, जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल बाय नानी पालकीवाला। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस लेसन को पढ़ने के लिए हम सभी पेज नंबर 43 पर चलते हैं। चैप्टर 5 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल बाय नानी पालकीवाला। Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. तो यहाँ पर कुछ important expressions दिए गए हैं जिन्हें हम इस chapter के दौरान पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए, ये कौन सी expressions हैं, इन्हें हम जान लेते हैं। A holistic and ecological view, sustainable development, languish, ignominious darkness, inter alia, decimated, catastrophic depletion, ट्रांसेंडिंग कंसर्न। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देती हूँ, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल चैप्टर बेस्ड है अर्थ पर, कि कैसे अर्थ की हालत डिटेरियोरेट हो रही है, खस्ता हालत होती जा रही है, रिसोर्सेस अर्थ पर कम होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आप जंगलों का उदाहरण ही ले लीजिए। पहले तो बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, काफ़ी सारे पेड़ पौधे तो आपके सामने ही कटे होंगे। आपने सुना होगा कि रोड बन रहा है तो पेड़ काट दिए गए, अगर घर बन रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया बन रहा है तो पेड़ काट दिए गए। ऐसे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, देखिए घर तो सभी को चाहिए, घर तो बनाने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए पेड़ों को काटना पड़ रहा है। बाकी भी चीज़ों के लिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर चीज़ की कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लोग हर चीज़ का ज़्यादा उपयोग करते हैं, पेड़ से बनी हुई चीज़ों का भी ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिस वजह से पेड़ों को काटना पड़ रहा है। और ये अब लार्ज स्केल होने लग गया है, बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, जिसके वजह से अब अर्थ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि पेड़ बारिश लाने में हेल्प करते थे और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को बना कर रखते थे, लेकिन अब पेड़ कट जाने की वजह से इंडियन या फिर आप अर्थ के एटमोसफेयर में देखेंगे कि कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। आपने न्यूज़पेपर में कुछ टाइम पहले सुना भी होगा कि ओजोन लेयर में होल हो गया है। ओजोन लेयर में होल होने का एक मेन रीज़न यही है कि पेड़ कटते जा रहे हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि फिशरीज जो ओशन वगैरह हैं उसमें भी कितने ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आसमान में भी पॉल्यूशन है, ज़मीन पर भी पॉल्यूशन है, मिट्टी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि केमिकल्स को हम मिट्टी में ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, अब कुछ भी उगाना मुश्किल होता जा रहा है। इस तरह से अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए एक ग्रीन मूवमेंट शुरू हुई थी। ग्रीन मूवमेंट में, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, कि आपको अर्थ को बचाना है, ये एक सेव अर्थ मूवमेंट थी। इसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए गए थे, जिससे हम जो है जो गलत प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं उन्हें ख़त्म कर सकें और अपने अर्थ को बचा सकें। डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो सस्टेनेबल बेसिस पे होनी चाहिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट इस तरह से कीजिए कि आज की नीड भी कंप्लीट हो जाए, आज की नीड भी फुलफिल हो जाए, आपको जितना चाहिए आपको भी मिल जाए और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी बच जाए। क्योंकि जिस हिसाब से हम कर रहे हैं उससे तो फ्यूचर जनरेशन को कुछ मिलने ही नहीं वाला, उन्हें तो बहुत सारे बस प्रॉब्लम्स का ही सामना करना पड़ेगा, बीमारियां भी बढ़ जाएंगी। लेकिन हमें इस तरह से डेवलपमेंट करनी है कि आज जितनी हमारी नीड है उस हिसाब से भी हम काम कर ले और फ्यूचर के लिए भी बच जाए। ये जो हम ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं चीज़ों का, या फिर सारी चीज़ों को अपने हिसाब से ही यूज़ करने की सोच रहे हैं, आगे की जनरेशन का नहीं सोच रहे, ये आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसका बहुत बड़ा रोल है हमारे अर्थ को बचाने में
तो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर से ये समझना है कि हमारा अर्थ किस तरह से अब बहुत खस्ता हालत में हो रहा है, जीने लायक ये जगह नहीं बचेगी अगर इसी तरह से चलता रहा तो, आगे वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए हमें अपने अर्थ को बचाने के लिए और ख़ुद को भी बचाने के लिए हमेशा सही प्रैक्टिस का यूज़ करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों से हमें अर्थ को बचाना चाहिए, जैसे वाटर वेस्टेज ना करें, फूड वेस्टेज ना करें, प्लास्टिक का यूज़ कम करें, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट ना करें, ये छोटी छोटा जो हमारा योगदान होगा उसी से काफ़ी फर्क पड़ने लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया है, आइए अब हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नानी पालखीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। द इश्यूज दैट ही रेज रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कॉन्टिन्यू टू हैव रेलिवेंस। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक आर्टिकल है जो नानी पालखीवाला जी ने लिखा था 1994 में, जिसे लिखे हुए अभी काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं, लेकिन जिस इशू को उन्होंने इस आर्टिकल में उठाया था कि अर्थ की हालत कैसे ख़राब होती जा रही है, उसका रेलेवेंस आज भी है, उस बात को आज भी हमें मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, और इस आर्टिकल में जो बातें लिखी गई हैं उनके अभी तक कुछ ना कुछ मतलब निकलता है, वो अभी तक हमें गाइड करने में बहुत हेल्पफुल हैं। तो आइए अब हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आसपास चीज़ें हो कैसे रही हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थ को, हमारी जो पृथ्वी है उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. तो यहाँ ये कहा गया है कि शायद ही पूरी दुनिया में कोई ऐसा आंदोलन हुआ हो जिसने सारी जो ह्यूमन रेस है, सारे इंसानों को इतना अट्रैक्ट किया हो, इतना ज़्यादा आकर्षित किया हो जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने किया था, जो अब से लगभग 25 साल पहले शुरू हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल लिखा गया है 1994 में, तो 1994 से 25 साल पहले आपको देखना है। फिर इसमें बताया गया है कि 1972 में ग्रीन पार्टी बनी थी एक न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड एक देश है, वहाँ पर एक ग्रीन पार्टी बनी थी, और जब से उसका फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद से ये जो ग्रीन मूवमेंट है ये पीछे मुड़कर नहीं देख पाया है, आगे ही आगे बढ़ता गया है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इरेवोकेबली फ्रॉम the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perceptions as revolutionary as that. Chaliye students, page number 44 par aaiye. Introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun. For the first time in the history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. पहले जो हम लोग थे वो हम एक मशीन की तरह देखा करते थे धरती को, लेकिन अब हम उसे एक मशीन की तरह नहीं देखते, हम उसका होलिस्टिक व्यू देखते हैं, हम हर तरीके से उसे देखते हैं, और अब तो हम ये मानने लगे हैं कि जो पृथ्वी है वो भी हमारी तरह एक जीती जागती जीव है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके भी अपने नीड्स हैं, जैसे हमारे बॉडी को खाना चाहिए, पानी चाहिए, ऐसे ही पृथ्वी के भी कुछ नीड्स हैं, क्योंकि वो भी एक जीती जाती ऑर्गेनिज्म की तरह हम उसे देख रहे हैं, एक जीते जाते क्रिएचर की तरह। पहले हम देखते थे कि हाँ भाई मशीन है, मशीन भी क्या, आप यूँ कह लीजिए कि पृथ्वी है, पत्थर है, पानी है, ये सब है, ये तो होता ही है, और इस पर हमें रहना है, इसके रिसोर्सेज का यूज़ करना है, लेकिन अब हम पृथ्वी को भी देखने लगे हैं कि इसकी भी तो अपनी नीड्स हैं, इसे भी तो किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, उस तरह से हम इसे देखने लगे हैं। अब जो 16वीं शताब्दी थी उसमें कॉपरनिकस ने इंसानों को बताया था कि पृथ्वी और जो बाकी के ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। और इस तरह से एक जागरूकता पैदा हुई थी कि जो धरती है वो भी जीवित है। धरती ऐसे नहीं है कि भाई कोई मरी हुई सी चीज़ है, धरती भी जीवित है, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इस टाइप से हम अब धरती को देखने लगे हैं। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। वी हैव बिगन टू रियलाइज आर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस। धरती को देखकर इस समय ऐसा लगता है कि जैसे कोई पेशेंट अपने बिस्तर पर पड़ा हो। हमने अपने जो प्लैनेट है उसकी अच्छे से देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है अब उसे समझना शुरू कर दिया है। पहले हम ऐसा कुछ भी नहीं करते थे और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जिम्मेदार देखभाल करने वाला बनने लगे हैं। अब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो कुछ छोड़ना है ना, उनके लिए हम ऐसे खराब हुई धरती तो नहीं छोड़ सकते, उनके लिए भी हमें कुछ अच्छा करना है। तो अब वो जिम्मेदारियां भी हम लोग समझने लगे हैं। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया इज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। तो 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट था जहाँ पर पहली बारी जारी किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी कि इस तरह का विकास जिसमें प्रेजेंट की जितनी भी नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाएं, लेकिन जिनका इफेक्ट आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर ना पड़े, उनकी नीड्स पर ना पड़े, उनकी भी पूरी हो जाएं। इसका मतलब ये है कि हमें धरती के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस तरह से यूज़ करना है कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रॉपर अमाउंट में वो मिल जाएं, उनके लिए ये कम ना रहें। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal." Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. Thanks to the efforts of number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. जाम्बिया के लुसाका में एक चिड़ियाघर में एक पिंजरा है जहाँ पर नोटिस लगा हुआ है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। जब आप पिंजरे के अंदर देखेंगे तो वहां पर कोई जानवर नहीं है, बल्कि वहां पर एक शीशा लगा हुआ है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। फिर नानी पालकी वाला कहते हैं कि हम आभारी हैं कि कई देशों ने काम किया है इस बारे में, कई एजेंसीज ने काम किया है जिसकी वजह से जो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा हो गई है, यानी इंसानों के अंदर अब अवेयरनेस पैदा हो गई है। और उन्होंने ये जो डोमिनेशन यानी ऐसी नीति जो इनकी थी कि बस हम ही हम हैं और बाकी किसी का हमें कुछ लेना देना नहीं है, इस सब को छोड़ दिया है और अब उन्होंने अपनी नीति को ऐसा कर लिया है कि हमें इस धरती को भी साथ लेकर चलना है, इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सबको साथ लेकर चलना है, चाहे वो लिविंग बींग्स हैं या नॉन लिविंग बींग्स हैं, सबको साथ लेकर चलना है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज। बायोलॉजिस्ट रिकॉन दैट अबाउट 3 to 100 million अदर लिविंग स्पीशीज still languish unnamed in ignominious darkness. साइंटिस्ट ने यानी वैज्ञानिकों ने इंसान के साथ इस धरती पर रहने वाले लगभग 1.4 मिलियन जीव के जो प्रजातियां हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली है। जो प्रजातियां अभी सूची से बाहर हैं, उस लिस्ट से बाहर है, उनके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। जीव वैज्ञानिक ये मानते हैं
कि 300 से लेकर 100 मिलियन और प्रजातियां अभी भी अनजाने अंधेरे में जी रही हैं, जिनके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वॉज द ब्रांड कमीशन विच हैज डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स मिस्टर एल के झा। The first Brandt report raised the question, are we to leave our successors, a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? अंतर्राष्ट्रीय आयोग में सबसे पहले जिस आयोग ने environment और ecology के विषय में चर्चा की थी उसका नाम था Brandt Commission, जिसमें एक इंडियन भी था जिनका नाम था Mr. L.K. झा। ब्रांट कमीशन की पहली रिपोर्ट में ये क्वेश्चन उठाया गया था कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को रेगिस्तानों की ओर बढ़ता हुआ एक सूखा प्लैनेट और खत्म होते हुए लैंडस्केप और बीमार वातावरण देकर जाएंगे। मिस्टर लिस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर: fisheries, forests, grasslands and croplands, and they form the foundation of the global. Chaliye students, page number 45 par aaiye. Economic system. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetics. In large areas of world, human claims on these systems as reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. When this happens, fisheries collapse, forest disappears, grasslands are converted into barren wastelands, and croplands deteriorate. In a protein-conscious and protein-hungry world, overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी बुक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में इस बात की ओर इशारा किया था कि धरती में चार मेन बायोलॉजिकल सिस्टम हैं जो जल, जीव, जंगल, चारागाह और एग्रीकल्चर जिसपे किया जा सके ऐसी धरती हैं। इन्हीं से हमारे सारे दुनिया के आर्थिक जितना भी काम होता है वो चलता रहता है। हमें खाना देने के साथ साथ ये बस खनिज और पेट्रोलियम वाली चीज़ों को छोड़कर हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए हर तरीके का कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं। दुनिया के ज़्यादातर जगहों में इन प्रक्रियाओं के ऊपर भार समापन के लेवल तक पहुंच चुका है, यानी अब बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता जा रहा है जिसकी वजह से ये ख़त्म होते जा रहे हैं जो भी आपके रिसोर्सेज हैं। ये इस स्तर तक पहुंच चुका है, इस लेवल तक पहुंच चुका है जहां पर अब इनके जो बनने का जो काम है, जो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है और ये चीज़ें अब हमें नहीं मिल रही। और ऐसा भी हो सकता है कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें जो हमें फिश वगैरह मिलती हैं या बाकी के जितने भी हमारे समुद्री जीव हैं वो मिलते हैं वो ख़त्म होने लगे हैं, जंगल गायब होने लगे हैं, चारागाह बंजर भूमि में बदलने लगे हैं और जहाँ पर एग्रीकल्चर होता था, खेती होती थी, वहाँ पर भी अब प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। आज के प्रोटीन के प्रति जागरूक और प्रोटीन के भूखे संसार में जो मछलियाँ वगैरह हैं उन्हें मारकर खाना एक आम बात हो गई है। और अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि कई देशों में खाना पकाने के लिए चूल्हे की लकड़ी के जो यूज़ होता है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जंगल ख़त्म हो रहे हैं,
लकड़ी अब थोड़ी हो रही है तो कुछ जगहों पर लकड़ी इतनी ज्यादा महंगी होती जा रही है कि बर्तन में पकाने के लिए जो खाना रखा जाता है उससे कई ज्यादा कीमत उस ईंधन की है जो उसे जलाने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि डॉक्टर मेयर्स ने कहा है कि मैदानी एरिया के जो जंगल हैं वो हमारे विकास का पावर हाउस है और इन्हीं को जो ख़त्म किया जा रहा है उसकी वजह से जो आपके अलग अलग जीव वहाँ पर रहते हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। पेड़ कट रहे हैं तो ना उनके पास रहने के लिए कोई जगह है ना खाने के लिए कुछ है, तो उस वजह से धीरे धीरे वो जानवर भी ख़त्म होते जा रहे हैं। काफ़ी सारी स्पीशीज ऐसे एक्सटिंक्ट हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं।
It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. And the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimates that a fivefold increase in the rate of forest planting is needed to cope up with the expected fuel wood demand in the year 2000.
ये बिल्कुल ठीक कहा गया है कि इंसान के आने से पहले जंगल होते हैं और उनके बाद रेगिस्तान। दुनिया के प्राचीन मैदानी जंगल की धरोहर 40 से 50 मिलियन एकड़ हर साल ख़त्म होती जा रही है। जानवर का जो डंग होता है या जिसे मल कहते हैं, जैसे कि उपले होते हैं, आपने सुना होगा काउ डंग के एक उपले हैं, उपलों को जलाने की वजह से मिट्टी में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे जो उसकी फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि अगर हमें सन 2000 तक ईंधन की लकड़ी की ज़रूरतों को पूरा करना है तो आज जिस गति से जंगल को काटा जा रहा है उससे 5 गुना ज्यादा स्पीड से हमें पेड़ लगाने होंगे।
जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर अ सेकंड, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकर एंड अ हाफ टू अ सेकंड।
जेम्स स्पेथ का कहना है कि हम ये सोच रहे थे कि हम एक एकड़ हर सेकंड की स्पीड से अपने जंगलों को खो रहे हैं, लेकिन ये एक सेकंड में लगभग 1.5 एकड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। यानी अब हम इतना ज़्यादा अपने जंगलों को खोने लगे हैं, इतना ज़्यादा जंगल कट रहे हैं।
आर्टिकल 48A ऑफ आर Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. But what causes endless anguish is the fact that the laws are never respected nor enforced in India. For instance, the Constitution says that casteism, untouchability, and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the Constitution. A recent report of our Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics.
Indian Constitution के Article 48A में कहा गया है कि ये state का कर्तव्य होगा कि वो वातावरण की सुरक्षा, जंगलों और जंगली जानवरों की देखभाल करने का प्रयास करें, कोशिश करें। लेकिन जो दुखी करने वाली बात ये है कि भारत में कभी भी नियमों को ठीक ढंग से नहीं माना जाता। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ नानी पालकीवाला ने कहा है कि जैसे संविधान में तो जातिवाद, छुआछूत, बंधुआ मजदूरी सबको ख़त्म करने की बात की गई है, लेकिन संविधान की प्रक्रिया में आने के 40 साल बाद भी ये सब बुराइयाँ बेशर्मी से फल फूल रही हैं। हाल ही में संसद की एक समिति ने पिछले 4 दशक में भारत के जंगलों का तेजी से विनाश होने की बात को एक्सेप्ट कर लिया है। एक डेटा के अनुसार भारत 3.7 मिलियन प्रति एकड़ की स्पीड से अपने जंगलों को खोता जा रहा है। जिन बड़े एरिया को आधिकारिक रूप से जंगल का क्षेत्र माना गया है वहां तो पहले ही पेड़ खत्म हो चुके हैं। जंगलों की असल में हानि सरकारी आंकड़ों से लगभग 8 गुना ज्यादा तेजी से हो रही है।
चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 46 पर आइए। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated.
United Nations यानी संयुक्त राष्ट्र ने 3 साल तक सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी की हेल्प से एक एनालिसिस किया है जिसमें इस बात का चेतावनी दी गई है कि जितने भी कंट्रीज का उन्होंने एनालिसिस किया है उनमें 88 कंट्रीज हैं, 88 राष्ट्र हैं, उनके वातावरण की जो स्टेट है, जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि अब वो चेतावनी के लेवल तक पहुंच गई है।
There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. It took mankind more than 1 million years to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days, the world population increases by 1 million.
नानी पालखीवाला ने कहा है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि दुनिया का भविष्य खराब होने की वजह एक जनसंख्या बहुत बड़ी वजह है। दुनिया की जनसंख्या पहले अरब तक पहुंचने में 1 मिलियन साल से भी ज़्यादा का समय लगा था। दुनिया की जनसंख्या 1800 के आसपास थी। 1900 में 1 अरब और जुड़ गया और 20वीं सदी में इसमें 3.7 बिलियन लोग जोड़ दिए गए। अब इससे हुआ क्या कि जो प्रेजेंट जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो लगभग 5.7 बिलियन है और हर चौथे दिन जनसंख्या में 1 मिलियन और लोग बढ़ जाते हैं, यानी इतनी हाई स्केल पर पॉपुलेशन राइज कर रही है।
Fertility falls as income rises, education spreads and health improves. Thus, development is the best contraceptive. But development itself may not be possible if the present increase in numbers continues.
तो जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, जन की दर कम होती जाती है, मतलब अब population कम होती है, उसके बाद education का भी बहुत बड़ा role है और health में भी सुधार होता है, इसलिए जनसंख्या को रोकने के लिए विकास बहुत अच्छा मीन्स है, उसे हम रोक सकते हैं, डेवलपमेंट होगी तो। लेकिन जिस स्पीड से इस टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो विकास भी कुछ नहीं कर पाएगा, डेवलपमेंट भी कुछ नहीं कर सकता।
द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। It is not suggested that the human beings be treated like cattle and compulsory sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty.
Nani Palkiwala keh rahe hain ki ameer to aur ameer hota ja raha hai aur gareeb ke samne aise gareebi mein paida hue bacche hain jo gareebi mein hi uljhe reh jate hain. ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा काम करने वाले हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा बेरोज़गार हो जाएंगे। ये ठीक नहीं होगा कि इंसानों को जानवरों की तरह जबरन पकड़कर उनका स्टेरिलाइजेशन कराया जाए, जिसे हम नसबंदी कहते हैं वो कराई जाए। इसीलिए खुद की मर्जी से भी अपनी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो फिर थोड़ा बहुत तो फोर्स का यूज करना ही पड़ता है, कोअर्जन यानी फोर्स का यूज करना ही पड़ता है जिससे पॉपुलेशन जो है वो वश में आ सके। अब दो ही ऑप्शंस हैं, या तो जनसंख्या को काबू में कर लिया जाए,
नहीं तो एक ऐसी गरीबी को शुरू कर दिया जाए जो कभी खत्म ही ना हो।
द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority.
अब आज का जो हिंदुस्तान है, यानी 1994 का, उसका जो हिंदुस्तान है उसमें लगभग 920 मिलियन लोग थे, जो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या को मिलाकर भी उससे भी ज्यादा थे। शायद ही भारत में कोई ऐसा इंसान होगा जो ये ना जानता होगा कि जनसंख्या पर काबू नहीं पाया गया तो लोगों की आशाएं उनके गरीब घरों में ही खत्म हो जाएंगी, खो जाएंगी। अगर जनसंख्या को इम्पोर्टेंस दी गई तो उसे काबू में रखा गया तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता।
फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन history, we see a transcending concern, the survival not just of people but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise. It is our passport for future. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts.
तो इंसान के इतिहास में, मानव इतिहास में पहली बार हमने जो अपनी थिंकिंग है उसे चेंज होते हुए देखा है, और लोग सिर्फ इंसान को नहीं देख रहे बल्कि पूरे प्लैनेट को बचाने में लगे हुए हैं। हमें हमारे जो अस्तित्व है उसे एक होलिस्टिक व्यू से देखना हमने शुरू कर दिया है, उसमें हमने अपने प्लैनेट को भी जोड़ लिया है। वातावरण की समस्या बस हमारे तक ही सीमित नहीं है बल्कि भविष्य का पासपोर्ट भी है, यानी भविष्य में जाना है तो आज की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और भविष्य के लोगों को भी एक अच्छी दुनिया देनी पड़ेगी। दुनिया में हर जो नई जिम्मेदारी है वो एक नए युग को जन्म देती है, यानी एक नया एक शुरू हो जाता है, एक एरा शुरू हो जाता है जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। हर जिम्मेदारी के साथ ऐसा होता है। तो अब हमने शुरू कर दिया है देखना कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ कोई सिंगल पार्ट नहीं है कि हाँ भाई पेड़ है, जंगल है, या फिर पहाड़ है, या इंसान है, या जानवर है, ऐसे अलग अलग नहीं देख रहे बल्कि हम एक सिस्टम की तरह इन्हें देख रहे हैं कि हम सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ मोर। चलिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 47 पर आइए। बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer, he said, "Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance." जिम्मेदारी के इस दौर में इंडस्ट्रीज की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सभी इंडस्ट्रियलिस्ट ड्यूपॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड की तरह सोचने लगे, जिन्होंने 5 साल पहले खुद को एक कंपनी के रूप में घोषित किया था और कहा था कि मैं इस कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हूँ। उनका कहना ये था कि हम एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री चला रहे हैं और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने वातावरण के प्रति भी जागरूक रहें। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, नन हैज passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous word. No generation has a freehold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease. In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. प्रधानमंत्री के रूप में दिए गए बयानों में मार्गरेट थैचर कि और कोई बात इंग्लिश जीवन में इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई जितनी एक खूबसूरत बात है कि मार्गरेट थैचर ने कहा था कि किसी भी इंसान पीढ़ी का इस धरती पर कोई ऐसा अधिकार नहीं है, हम बस इस जीवन भर के लिए किराए पर हमने इसे लिया है, जिसमें इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी भी हमारी है। मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में कहें तो हमने ये जो धरती है ये अपने पूर्वजों से नहीं ली है, बल्कि ये हमने अपने आने वाली पीढ़ियों से उधार में ली है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है धरती के ऊपर और हमें उनका सॉल्यूशन ढूंढना है, हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और उसमें दिए गए इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स और इतने अच्छे अच्छे बातें भी आप अपने डेली रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, क्वेश्चन वन, लोकेट द लाइंस इन द टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द फॉलोइंग लाइंस इन द टेक्स्ट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। आर वी लीव आर सक्सेसर्स अ स्कॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पोरिश लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। अ 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन Once the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of 88 countries investigated. Question 2. What does the notice, the world's most dangerous animals at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia, signify? This answer aap likhenge, the notice, the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia, signifies that man is solely responsible for all the deterioration in environment and depletion of natural resources. Thus, man is the world's most dangerous animal. Question 3. How are the Earth's principal biological systems being depleted? So, iska answer aap likhenge, the Earth's principal biological systems are being depleted by excessive use. Overfishing is quite common, forests are being cut down to obtain firewood for cooking, grasslands are turning into barren wastelands and croplands are deteriorating as their productivity has been impaired. Question 4. Why does the author agree that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, the growth of world population puts a serious strain on Earth's principal biological systems. Due to excessive human claims, it reached an unsustainable level where the productivity is damaged. Development is not possible if the world population continues to grow so rapidly. Increasing population brings hunger, poverty, and unemployment. Talking about text, question 1, discuss in groups of 4. तो यहाँ पर कुछ statements दी गई हैं जिन्हें आपको अपने friends के साथ discuss करना है. First, laws are never respected or enforced in India. तो पहले statement है कि India में ना कानून बन तो जाते हैं लेकिन ना उनका सम्मान किया जाता है और ना कभी लोग उन्हें फॉलो करते हैं. तो इस बारे में आपके क्या विचार है, इन्हें जरूर बताइएगा. सेकंड, आर वी टू लीव आर सक्सेसर्स अ स्कॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पोरिश लैंडस्केप्स एंड एन एलिंग एनवायरनमेंट. तो क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा प्लैनेट देने वाले हैं जिसमें सब कुछ खराब है, अब जो खेती है वो खत्म होती जा रही है, जमीन बंजर होती जा रही है, लैंडस्केप्स खराब होते जा रहे हैं और जो वातावरण है वो बिल्कुल ही बेकार हो गया है, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्वेश्चन 3, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि हमने ये जो धरती है ये अपने पूर्वजों से नहीं ली है, बल्कि हमने इसे अपने आने वाली पीढ़ी से किराए पर लिया है. तो क्या आप इस बात को मानते हैं और इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये भी आपको बताना है. Question 4, the problems of overpopulation that directly affect our everyday life. क्या बढ़ती हुई जनसंख्या रीजन है अर्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के आने का, जिसकी वजह से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है? इन सभी स्टेटमेंट्स पर आपको विचार करने हैं स्टूडेंट्स, इसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी इनकी पॉजिटिव बातें और नेगेटिव बातें दोनों पर आपको विचार करना है. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 48 पर चलते हैं. थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, द फ्रेज इंटर एरिया मीनिंग अमंग अदर थिंग्स इज वन ऑफ द मेनी लैटिन एक्सप्रेशंस कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश. फाइंड आउट व्हाट दीज लैटिन एक्सप्रेशंस मीन. तो स्टूडेंट्स, हमने एक लैटिन एक्सप्रेशन पढ़ा है इंटर एलिया जब हम इस टेक्स्ट को पढ़ रहे थे. अब यहाँ कुछ और एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, कुछ और फ्रेजेस दिए गए हैं, इनका मतलब आपको डिक्शनरी में से ढूंढकर यहाँ सामने लिखना है. जो है प्राइमा फेशिया, एड हॉक, इन कैमरा, एड इनफाइनाइटम, म्यूटेटिस, म्यूटेंडिस, कैवियट टेबुलर रासा। तो इन सब के मतलब आपको डिक्शनरी से जरूर ढूंढने हैं। वर्किंग विद वर्ड्स क्वेश्चन वन, लोकेट द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द टेक्स्ट एंड स्टडी देयर कॉनोटेशन। स्टूडेंट्स कुछ फ्रेज दिए गए हैं, इन्हें आपको ढूंढना है कि ये टेक्स्ट में कहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि द ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ डॉन्ड अपॉन अशर्ड इन पास्ड इन टू करंट कॉइन पासपोर्ट ऑफ द फ्यूचर। सेकेंड द वर्ड्स ग्रिप डॉन अशर कॉइन पासपोर्ट हैव अ लिटरल एज वेल एज फिगरेटिव मीनिंग। राइट पेयर्स ऑफ वर्ड यूजिंग ईच वर्ड इन लिटरल एज वेल एज फिगरेटिव सेंस। तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड्स हैं ग्रिप डॉन अशर कॉइन पासपोर्ट, इनके दो मीनिंग्स हैं। आपको पहले तो डिक्शनरी में उन मीनिंग्स को चेक करना है, उसके बाद दो सेंटेंसेस लिखने हैं इनके मीनिंग्स के ऊपर कि एक बार तो आप फिगरेटिव मीनिंग की तरह यूज कर लीजिए और एक बार किसी और मीनिंग की वजह से। ग्रिप ग्रिप यानी पकड़ना होता है जैसे, या फिर डॉन ले लीजिए, डॉन यानी सुबह उगना। तो सुबह उगना एक तो होप का भी वो है कि किसी चीज़ की स्टार्टिंग का भी आप कह सकते हैं, और एक आप जो नॉर्मल सुबह हो रही है उसका भी कह सकते हैं। तो आप दो सेंटेंस बना सकते हैं जैसे डॉन ऑफ 21st सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी की शुरुआत, या फिर ये कह सकते हैं कि दिस इज डॉन यानी अभी सुबह सूरज उगने का समय है। थिंग्स टू डू, फर्स्ट मेक पोस्टर्स टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन मूवमेंट। तो आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपको इम्पोर्टेंस दिखानी है ग्रीन मूवमेंट की। सेकेंड मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रीज कट डाउन एंड द पार्क्स डेमोलिश्ड इन योर एरिया और एनी अदर एक्ट दैट वायलेट्स द एनवायरमेंट। राइट टू न्यूज़पेपर्स रिपोर्टिंग ऑन एनी सच एक्ट्स दैट डिस्टर्ब यू। तो स्टूडेंट्स आजकल आपने अपने आसपास ही देखा होगा, कहीं कोई पेड़ कट रहा है, कहीं कोई पार्क खराब हो रहा है, तो इस बारे में आपको रिपोर्ट रखनी है। आपको देखना है कि क्या कैसे हो रहा है, और न्यूज़पेपर में फिर आप एक एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं, एक लेटर भेज सकते हैं न्यूज़पेपर को इस बारे में जानकारी देते हुए, जिससे ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं और हमारा एनवायरनमेंट हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। आपके छोटे छोटे स्टेप्स ही बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल बाय नानी पालखीवाला। और हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। आप सभी को इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है और एक्सरसाइज में दिए गए सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत अच्छे से देने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।